ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम एक रूप आत्मा हो, उसमें फुरने से विश्व कल्पित हुआ है, इससे वासना से रहित हुए बिना आत्मा का दर्शन नहीं होता। जैसे उदय हुआ सूर्य भी बादल के होते शुद्ध नहीं दिखता, वैसे ही स्फुरण रूपी बादल के दूर होने पर ही आत्मरूपी सूर्य शुद्ध भासित होता है और दृश्य दर्शन दृष्टा फुरने से ही कल्पित हुए हैं। हे राम जी, इस संसार का सार जो आत्मा है, जिसमें सुषुप्त की तरह मौन हो रहो।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 50। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, असत रूपी चित्त के संसरने से ही जगत रूप होकर भासता है। जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्तमाला, ब्रह्मात्र गंधर्व नगर और स्वप्न भ्रम से जगत भ्रम भासित होते हैं, तैसे ही चित्त के संसरने से जगत भ्रम भासता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा नित्य तृप्त शांत रूप सम और अपने आप में ही स्थित है। उसमें चित्त संवेदन ने जगत रचा है और उसको भ्रम से सत्य किनाई देखता है। जैसे स्वप्न सृष्टि को मनुष्य भ्रम से देखता है, तैसे यह जगत फुरने से सत्य भासता है। हे रामचंद्र जी, मन के संसरने का नाम जागृत है, अहंकार का नाम स्वप्न है। चित्त जो सजातीय रूप चेतने वाला है, उसका नाम सुषुप्ति है और चिन्मात्र का नाम तुर्यपद है। जब शुद्ध चिन्मात्र में अत्यंत परिणाम हो, तब उसका नाम तुर्यातीत पद है। उसमें स्थित हुआ फिर शोकवान कदाचित नहीं होता। उसी ब्रह्म सत्ता से सब उदय होते हैं और उसी में सब लीन होते हैं। और वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई लीन होता है। चित्त के फुरने से ही सब भ्रम भासता है। जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्तमाला भासती है, तैसे चित्त के फुरने से यह जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसे वृक्ष के बढ़ने को आकाश ठोर देता है कि जितनी बीज की सत्ता हो उतना ही आकाश में बढ़ता जावे, तैसे ही सबको आत्मा ठोर देता है। अकर्ता रूप भी संवेदन से भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसे निर्मल किया हुआ लोहा आरसी की नई प्रतिबिंब ग्रहण करता है, तैसे ही आत्मा में संवेदन से जगत का प्रतिबिंब होता है। पर वास्तव में जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। जैसे एक ही बीज पत्र फूल फल और टास होकर भासता है, तैसे ही आत्मा संवेदन से नाना रूप जगत होकर भासता है। जैसे पत्र और फूल वृक्ष से भिन्न नहीं होते, तैसे ही अबोध रूप जगत भी बोध रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। जो ज्ञानवान है उसको अखंड सत्ता ही भासती है। जैसे समुद्र ही तरंग और बुदबुदे होकर और बीज ही पत्र फूल फल और टास होकर भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को भिन्न भिन्न नाम रूप भासता है। मूर्ख जो देखता है तो उसको नाम रूप जगत सत मानता है। ज्ञानवान उसको देख के एक रूप ही जानता है। ज्ञानवान को एक ब्रह्म सत्ता ही अनंत भासती है और जगत ब्रह्म उसको कोई नहीं भासता। इतना सुनकर राम जी ने कहा, बड़ा आश्चर्य है कि असत रूपी जगत सत होकर बड़े विस्तार से स्पष्ट भासता है। यह जगत ब्रह्म का आभास है, अनेक तन्मात्रा उसके जल और बूंदों की नाई है और अविद्या करके फुरती है, ऐसा भी मैंने सुना है। हे मुनीश्वर, यह स्फूर्ति बहिर्मुख कैसे होती है और अंतर्मुख कैसे होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दृश्य का अत्यंत अभाव है। अनहोते दृश्य के फुरने से अनुभव होता है, शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म सत्ता में फुरने से जो जीवत्व हुआ है वह जीवत्व असत है और सत किनाई होता है। जीव ब्रह्म से अभिन्न है पर फुरने से भिन्न किनाई स्थित होता है। उस जीव में जब संकल्प कलना होती है तब मन रूप होके स्थित होता है, स्मरण करके चित्त होता है, निश्चय करके बुद्धि होती है और अहम भाव करके अहंकार होता है। फिर काक ताल किनाई चिद अणु में तन्मात्रा फुराती है। जब शब्द सुनने की इच्छा हुई तब श्रवण इंद्रिय प्रकट हुई, जब देखने की इच्छा हुई तब नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई, गंध लेने की इच्छा से नासिका इंद्रिय प्रकट हुई, स्पर्श की इच्छा से त्वचा इंद्रिय प्रकट हुई और रस लेने की इच्छा से रसना इंद्रिय प्रकट हुई है। इस प्रकार पांचों इंद्रिया प्रकट हुई है और भावना से सत ही असत किनाई भासने लगी है। हे राघव, इस प्रकार आदि जीव हुए हैं और उनकी भावना से अंतवाहक शरीर हो आए हैं। चलते भासते हैं पर अचल रूप है, इससे जो कुछ जगत भासता है वह सब ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ब्रह्म है और संवेदन ब्रह्म से ही अनेक रूप नाना प्रकार के भासते हैं। जैसा जैसा संवेदन फुरता है तैसा तैसा रूप होकर भासता है। जब दृश्य को चेतता है तब नाना प्रकार का दृश्य भासता है और जब अंतर्मुख ब्रह्म चेतता है तब ब्रह्मरूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, दृश्य कुछ उपजा नहीं, आत्मा सदा अपने आप में स्थित है। जब दृश्य असंभव हुआ तब बंधन और मोक्ष किसको कहिए और विचार किसका कीजिए? सर्व कल्पना का अभाव है। यह जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर सिद्धांत काल में होगा, यहां न बनेगा। जैसे कमल के फूलों की माला अपने काल में बनती है और बिना समय शोभा नहीं देती, तैसे ही तुम्हारा प्रश्न सिद्धांत काल में शोभा पावेगा। समय बिना सार्थक शब्द भी निरर्थक होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ है उनका फल भी समय पाके होता है, समय बिना नहीं होता। इसे अब पूर्व प्रसंग सुनो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म में चैतन्य मुखत्व से आदि जीव ने आपको पिता माता जाना। जैसे स्वप्न में आपको कोई देखे तैसे ही ब्रह्मा जी ने आपको जाना। उन ब्रह्मा ने प्रथम ओम शब्द का उच्चारण किया, उस शब्द तन्मात्रा से चारों वेद देखे और उसके अनंतर मनोराज से सृष्टि रची। तब असत रूप सृष्टि भावना से सत्य होकर भासने लगे। जैसे स्वप्न में सर्प और गंधर्व नगर भासते हैं, तैसे ही असत्य रूप सृष्टि सत्य भासने लगी है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सत्ता में जैसे ब्रह्मा अधिक उपजे है, वैसे ही और जीव कीट आदि भी उत्पन्न हुए हैं। जगत का कारण संवेदन है, संवेदन भ्रम से जीवों को जगत भासता है। उनको भौतिक शरीर में जो अहम प्रतीति हुई है, उससे अपने निश्चय के अनुसार शक्ति हुई है। ब्रह्मा से ब्रह्मा की शक्ति का निश्चय हुआ और चींटी में चींटी की शक्ति का निश्चय हुआ। हे रामचंद्र जी, जैसी जैसी वासना संवित में होती है, उसके अनुसार ही अनुभव होता है। शुद्ध चिन्मात्र में जो चैतन्य मुखत्व हुआ, उसी का नाम जीव हुआ। उसमें जो ज्ञान रूप सत्ता है, सोई पुरुष है, और जो फुरना है, सोई कर्म है। जैसे जैसे फुरता है, तैसे ही तैसे भासता है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता में जो अहम हुआ है, उसी का नाम चित्त है। उससे जो जगत रचा है, वह भी अविचार सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। जैसे अविचार से अपनी परछाई में भूत पिशाच कल्पता है और उससे भय उत्पन्न होता है, पर विचार करने से पिशाच और भय दोनों नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही हे रामचंद्र जी, आत्मविचार से चित्त और जगत दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है, उसमें चित्त कल्पना कोई नहीं, और प्रमाता प्रमाण प्रमेय भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, तो द्वैत की कल्पना कैसे हो। जैसे शशय के श्रृंग असत है, तैसे आत्मा में द्वैत कल्पना असत्य है। हे रामचंद्र जी, यह ब्रह्मांड भावना मात्र है, जिसको सत्य भासता है उसको बंधन का कारण है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी अपना गृह अपने बंधन का कारण बनाती है और उसमें फंस मरती है, तैसे ही जो जगत को सत्य मानते हैं, उनको अपना मानना ही बंधन करता है और उससे जन्म मरण देखते हैं। जिसको जगत का असत्य निश्चय हुआ है, उसको बंधन नहीं होता, उसको उल्लास है। हे रामचंद्र जी, अनुभव सत्ता सबका अपना आप है, उसमें जो जैसा निश्चय किया, उसको अपने अनुभव के अनुसार पदार्थ भासते हैं। वास्तव में तो जगत उपजा नहीं, जगत का उपजना भी मिथ्या है, बढ़ना भी मिथ्या है, रस भी मिथ्या है और रस लेने वाला भी मिथ्या है। शुद्ध ब्रह्म सर्वगत नित्य और अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है, परंतु अज्ञान से शुद्ध भी अशुद्ध भासता है, सर्व जगत भी परिच्छिन्न भासता है, ब्रह्म भी अब्रह्म भासता है, नित्य भी अनित्य भासता है और अद्वैत द्वैत भी अद्वैत सहित भासता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से ऐसा भासता है जैसे जल और तरंग में मूर्ख भेद मानते हैं, परंतु भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद अज्ञानी देखते हैं। जैसे सुवर्ण में भूषण और रस्सी में सर्प मूर्ख देखते हैं, तैसे ब्रह्म में नानात्व मूर्ख देखते हैं। ज्ञानी को सब चिदाकाश है। हे रामचंद्र जी, जब आत्मसत्ता में अनात्म रूप दृश्य की चैतन्यता होती है, तब कल्पना उत्पन्न होती है और मन रूप होके स्थित होती है। उसके अनंतर अहम भाव होता है और फिर तन्मात्र की कल्पना होकर शब्द अर्थ की कल्पना होती है। इसी प्रकार चित्त सत्ता में जैसी जैसी चैतन्यता फुरती है तैसा ही तैसा रूप भासने लगता है। सत असत पदार्थ वासना के वश फुराते हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि फुराती है सो अनुभव रूप ही होती है, वैसे ही यह जगत फुराया है सो अनुभव रूप है। इससे सृष्टि में भी चिन्मात्र है और चिन्मात्र में ही सृष्टि है। सबको सत्तारूपी भीतर बाहर ऊर्ध्व अध चिन्मात्र ही है। प्रमाता प्रमाण और प्रमेय सब पद चिन्मात्र ही में धारे हैं, नित्य उपशांत रूप है। समस्त जगत की सत्ता उसी से होती है सो एक ही सम है और तुर्य अतीत पद नित ही स्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है और उसमें महाप्रश्नों का समूह है सो सुनो। काजल के पर्वत किनाई कर्कटी नाम एक महाश्याम राक्षसी हिमालय पर्वत के शिखर पर हुई। विसुचिका भी उसका नाम था। अस्थिर बिजली किनाई उसके नेत्र और अग्नि किनाई बड़ी जिह्वा चमत्कार करती थी और उसके बड़े नख और ऊंचा शरीर था। जैसे बड़वाग्नि तृप्त नहीं होता तैसे ही वह भोजन करने से तृप्त न होती थी। उसके मन में विचार उपजा कि जम्बूद्वीप के संपूर्ण जीवों को भोजन करो तो तृप्त हो, अन्यथा मेरी तृप्ति नहीं होती। आपदा उद्यम किए से दूर होती है, इससे मैं अखंड चित्त होकर तप करूं। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार कर वह एकांत हिमालय पर्वत की कंदरा में एक टांग से स्थिर हुई और दोनों भुजाओं को उठा के नेत्र आकाश की ओर किए मानो मेघ को पकड़ती है। शरीर और प्राणों को स्थिर करके मूर्ति किनाई हो गई, शीत और उष्ण के क्षोभ से रहित हुई और पवन से शरीर जर्जरी भूत हुआ। जब इस प्रकार सहस्त्र वर्ष दारुण तप किया तब ब्रह्मा जी आए और राक्षसी ने उन्हें देख के मद से नमस्कार किया और मन में विचारा कि मेरे वर देने के निमित्त यह आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तूने बड़ा तप किया है, अब उठ खड़ी हो और जो कुछ चाहती हो वह वर मांग। कर्कटी बोली, हे भगवान, मैं लोहे किनाई वज्र विसुचि का हूं जिससे जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाओ। हे रामचंद्र जी, जब ऐसे उस मूर्ख राक्षसी ने वर मांगा तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे ही होगा, तेरा नाम भी प्रसिद्ध विसुचि का होगा। हे राक्षसी, जो दुराचारी जीव होंगे उनके हृदय में तू प्राणवायु के मार्ग से प्रवेश करेगी और जो गुणवान तेरे निवृत्त करने के निमित्त ओम मंत्र पढ़ेंगे और यह पढ़ेंगे कि हिमालय के उत्तर शिखर में कर्कटी नाम राक्षसी विसुचि का है सो दूर हो और विसुचि का दुखी चंद्रमा के मंडल में चितवे की अमृत के कुंड में बैठा है और राक्षसी हिमालय के शिखर को गई तब तो उनको त्याग जाना, उनमें तो प्रवेश न कर सकेगी। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहके ब्रह्मा जी आकाश को उड़े और इंद्र और सिद्धों के मार्ग से गए और वही मंत्र उनको भी सुनाया। जब उन्होंने उस मंत्र को प्रसिद्ध किया तब कर्कटी का शरीर सूक्ष्म होने लगा। जैसे संकल्प का पहाड़ संकल्प के क्षीण होने से क्षीण होता है, तैसे ही क्रम से प्रथम जो उसका मेघवत आकार था सो घटकर वृक्षवत हो गया, फिर वह पुरुष रूप हो गई, फिर हस्त मात्र, फिर प्रदेश मात्र और फिर सुई किनाई सूक्ष्म हो गई। हे रामचंद्र जी, ऐसे रूप को कर्कटी ने धारा जिसको देख मूर्ख अविचारी पुरुष तृण किनाई शरीर को त्यागते हैं। जो पुरुष परापर को विचारते हैं सो पीछे से कष्ट नहीं पाते, और जो पूर्वापर विचार से रहित है सो पीछे कष्ट पाते हैं और अनर्थ करके औरों को कष्ट देते हैं। वे एक पदार्थ को केवल भला जान के उसके निमित्त यत्न करते हैं, न धर्म की ओर देखते हैं और न सुख की ओर देखते हैं। इस प्रकार मूर्ख राक्षसी ने भोजन के निमित्त बड़े गंभीर शरीर को त्याग कर तुच्छ शरीर को अंगीकार किया। उसका एक शरीर तो सूक्ष्म हुआ और दूसरा पुरिष्टक हुआ। कहीं तो सूक्ष्म शरीर से जिसको इंद्रिया भी न ग्रहण कर सके प्रवेश करे, और कहीं पुरिष्टक से जाकर प्रवेश करे। कहीं प्राणवायु के साथ प्रवेश करके दुख दे और कहीं प्राणी को विपर्यय करे तब प्राणी कष्ट पावे, और कहीं रक्त आदि रसों का पान कर एक बूंद से उदर पूर्ण हो जावे परंतु तृष्णा निवृत्त न हो। जब शरीर से बाहर निकले तब भी कष्ट पावे, और वायु से चले उससे गड्ढे और कीचड़ में गिरे और चरणों के तले आवे। निदान कभी देशों में रहे और कभी घास और तृण में रहे। जो नीच पापी जीव है उनको कष्ट दे, और गुणवान हो उनको कष्ट न दे सके। मंत्र पढ़ने से निवृत्त हो जावे। जो आप किसी छिद्र में भी गिरे तो जाने कि मैं बड़े कूप में गिरी। हे रामचंद्र जी, मूर्खता से उसने इतने कष्ट पाए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्य अस्त होकर सायंकाल का समय हुआ। तब सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई और विचार संयुक्त रात्रि व्यतीत करके सूर्य की किरणों के निकलते ही फिर आकर उपस्थित हुई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार प्राणियों को मारते उसे वर्ष बीते तब उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है। यह विसुचि का शरीर मुझको कैसे प्राप्त हुआ है? मैंने मूर्खता से यह वर ब्रह्मा जी से मांगा था। मूर्खता बड़े दुख को प्राप्त करती है। कैसा मेघ किनाई मेरा शरीर था कि सूर्य आदि को ढक लेती थी। हाय, मंदराचर पर्वत किनाई मेरी उदर और बड़वाग्नि किनाई मेरी जीभ कहाँ गई? जैसे कोई अभागी पुरुष चिंतामणि को त्याग दे और कांच अंगीकार करे, तैसे ही मैंने बड़े शरीर को त्याग के तुच्छ शरीर को अंगीकार किया, जो एक बूंद से ही तृप्त हो जाता है परंतु तृष्णा पूरी नहीं होती। उस शरीर से मैं निर्भय विचरती थी। यह शरीर पृथ्वी के कण से भी दब जाता है। अब तो मैं बड़े कष्ट पाती हूं। यदि मैं मृतक हो जाऊं तो छूटो, परंतु मांगी हुई मृत्यु भी हाथ नहीं आती। इससे मैं फिर शरीर के निमित्त तप करूं। वह कौन पदार्थ है जो उद्यम करने से हाथ ना आवे? हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर वह हिमालय पर्वत के निर्जन स्थान में जाकर एक टांग से खड़ी हुई और ऊर्ध्वमुख करके तप करने लगी। हरि हरि ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।